आज है 1 फरवरी दिन बुधवार। स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का नमस्कार। अरुण जेटली के बजट में 5 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को इनकम टैक्स में 50% की छूट।
In order to lessen the burden on individuals with income not exceeding 5 lakhs,
किसानों को लाखों करोड़ रुपए कर्ज का प्रस्ताव भी।
इस साल मैडम 10 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है।
जानेंगे कि चुनावी मौसम में इस बजट का मतदाता तक क्या संदेश जाएगा, साथ ही होंगे समर्थन के साथ साथ विरोध की आवाज भी।
वही चेहरा फिर दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार बड़ी पूंजीपतियों के पक्ष में ये सारा बजट पेश किया गया है।
और होंगे खेल जगत की खबरें भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आम बजट पेश करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था से काला धन निकालना सरकार की प्राथमिकता है। जेटली ने करदाताओं के लिए राहत का भी ऐलान किया। पहली बार आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश किया गया। बजट की खास बातों की जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता निखिल रंजन।
वित्त मंत्री ने बजट में 10 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज के तौर पर देने का प्रावधान किया है। मनरेगा पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। आयकर छूट की सीमा भी बढ़ाई गई है। अब 3 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बजट में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने और ई टिकट बुकिंग के दौरान अलग से सर्विस चार्ज नहीं लेने का ऐलान किया गया है।
ये थे बीबीसी संवाददाता निखिल रंजन। रूस की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी के 3 विशेषज्ञों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। उन पर अमरीका को जानकारी देने का आरोप है। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक के वकील ने समाचार एजेंसी इंटरफैक्स को बताया कि जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उसमें FSB के सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के उप प्रमुख सरगेई मिखाइलोव और उनके सहयोगी दिमित्री दोकुचिएव शामिल हैं। अटकलें हैं कि इन्हें अमरीकी चुनाव के दौरान कथित हैकिंग की CIA रिपोर्ट को लेकर हिरासत में लिया गया है। जर्मनी के पुलिस ने हेस में की गई छापेमारी कार्रवाई के दौरान ट्यूनीशिया के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती करने के मामले में पकड़ा गया है। पकड़े गए व्यक्ति की उम्र 36 साल है। उसका नाम जाहिर नहीं किया गया है। फ्रैंकफर्ट के मुख्य अभियोजक अलेक्जेंडर बार्डले ने मीडिया को बताया। जांच के तहत हेस की फोर्स ने आज सुबह 54 स्थानों पर छापे मारे। इनमें अपार्टमेंट, ऑफिस और 2 मस्जिदें शामिल थीं। फ्रैंकफर्ट में 33 जगहों पर छापे की कार्रवाई हुई। जांचकर्ता 16 से 46 साल के 16 संदिग्धों की तलाश कर रहे थे। मुख्य संदिग्ध 36 बरस का ट्यूनीशिया का नागरिक है। उस पर खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन का समर्थन करने का आरोप है। उस पर जर्मनी में हमला करने के लिए नेटवर्क तैयार करने का भी आरोप है। ये थे अलेक्जेंडर बार्डले के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। दक्षिण अफ्रीका में 90 से अधिक मानसिक रोगियों की मौत के मामले में आई जांच रिपोर्ट को लेकर खाउटेंग प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री केदानी महालांगू ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल करीब 2000 रोगियों को खास स्वास्थ्य केंद्रों से दूसरी जगहों पर भेज दिया गया। इसके बाद 94 रोगियों की मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर रोगियों की मौत ऐसी बीमारियों की वजह से हुई जिनका इलाज संभव है। रिपोर्ट में सरकार पर धन बचाने के लिए रोगियों को लेकर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। इसराइल के सुरक्षा बलों ने पश्चिमी तट के अमोना में अवैध तौर पर बसे लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में कहा था कि अमोना फलस्तीनी क्षेत्र की निजी ज़मीन पर बना है और इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। वहां रहने वाले लोगों में से एक आदि ने कहा कि वो संघर्ष के बिना इस जगह को नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है। मैं मानती हूँ कि ये मेरा घर है। ऐसा नहीं होता तो मैंने ये जगह छोड़ दी होती। उन्हें मुझे यहाँ से खींचकर हटाना होगा। ये थे अमोना के निवासी आदि के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने बिहार में बीते 2 दशक के दौरान सैकड़ों बच्चों की जान लेने वाली संदिग्ध बीमारी की जानकारी जुटाई है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। आज आपके साथ हूं मैं, राजेश जोशी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट पेश किया, कुछ इस अंदाज में।
नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग।
जाहिर है निशाने पर कांग्रेस सहित वो तमाम विपक्षी पार्टियां थीं जो नोटबंदी का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि नोटबंदी से काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा। आज पेश किए गए बजट के बारीक पहलुओं को समझने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आर्थिक मामलों के जानकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक आलोक पुराने। आलोक मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में ही अध्यापक हैं ये मुझे अंदाज़ा है। उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में और सुनेंगे इस बजट पर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन आइए पहले विनीत खरे से सुनते हैं बजट की खास बातों पर ये खास रिपोर्ट।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जब संसद की कार्रवाई शुरू की तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद के निधन को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई स्थगित करने की मांग की। हालांकि इस मांग को स्पीकर ने संवैधानिक परंपरा का हवाला देकर खारिज कर दिया। ई अहमद के निधन की वजह से गुरुवार को संसद नहीं चलेगी। आइए जानते हैं आज पेश किए गए बजट की मुख्य बातें। बजट में आयकर देने वालों को थोड़ी राहत दी गई है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर अब 5% टैक्स लगेगा जो अब तक 10% था। 5 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों को 10% सरचार्ज देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर वसूली देश की अर्थव्यवस्था के अनुपात में नहीं है और पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ 3.7 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न भरा। अरुण जेटली ने कहा कि सिर्फ 76 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 लाख से अधिक कमाई दिखाई, जबकि विदेश घूमने जाने वालों की संख्या 2 करोड़ थी। अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की वजह से आर्थिक टैक्स जमा हुआ है, इतना टैक्स पहले कभी नहीं जमा हुआ।
इट इज अ बोल्ड एंड डिसाइसिव मेजर फॉर सेवरल डेकेड्स। टैक्स इवेजन फॉर मेनी हैड बिकम अ वे ऑफ लाइफ।
अरुण जेटली कह रहे थे, नोटबंदी साहसिक और निर्णायक कदम है। कई दशकों से कर की चोरी आम बात हो गई थी, इससे गरीबों को नुकसान होता है और कर की चोरी करने वालों और अमीर लोगों को फायदा होता है। इससे एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई थी जो समाज के लिए स्वीकार योग्य नहीं है। ये थे अरुण जेटली के शब्द। अरुण जेटली ने कहा कि नौकरी पेशा लोगों पर सबसे अधिक दबाव है जो सबसे ईमानदारी से टैक्स देते हैं। राजनीति में काले धन को कम करने के लिए अरुण जेटली ने बजट में महत्वपूर्ण घोषणा की।
पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू टू रिसीव मोस्ट ऑफ देयर फंड्स थ्रू एनोनिमस डोनेशंस व्हिच आर शोन इन कैश।
अरुण जेटली कह रहे थे कि राजनीतिक दलों को ज्यादातर पैसा गुमनाम लोगों से नकद में मिलता है। राजनीतिक फंडिंग को साफ करने की जरूरत है। लोग खुलकर चेक से पैसा भी नहीं देना चाहते। मैं राजनीतिक दलों की फंडिंग में सफाई के लिए प्रस्ताव रखता हूं कि एक सोर्स से राजनीतिक दल 2000 कैश ही ले पाएंगे। राजनीतिक दल अपने डोनरों से चेक और डिजिटल पेमेंट से चंदा ले पाएंगे। आइए जानते हैं बजट की अन्य मुख्य बातें। रेलवे की 3 बड़ी कंपनियां IRCTC, IRFC और एयरकॉन के शेयर बाजार में लाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा पर सरकार 1 लाख करोड़ खर्च करेगी। IRCTC के जरिए ई टिकट बुकिंग्स के दौरान अब सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। अच्छे मॉनसून की वजह से कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वृद्धि की आशा वित्त मंत्री ने जताई। सरकार ने दावा किया कि 5 साल में किसानों की आय दोगुनी कर देगी। मनरेगा पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो अब तक का अधिकतम है। पिछले साल मनरेगा में 37,000 करोड़ का प्रावधान था। अगले साल 10 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज के तौर पर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 2 सालों में 1 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच पेश किया जा रहा है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की नीति जिसकी वजह से विदेशी निवेश घटा है, तेल के बढ़ते दाम और भारतीय कंपनियों को प्रोटेक्शनिज्म की वजह से आने वाली दिक्कतें। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
तो आलोक पुराने, किससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, आइए सुनते हैं बजट पेश करने के बाद दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में अरुण जेटली ने नोटबंदी को कैसे फायदेमंद बताया।
आज आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो कोई आपको नहीं कहेगा कि 40% कैश में दो। आज स्कूल के टीचर को आधी तनख्वाह कैश में दी और दस्तखत किसी और पे करवा लिए, ये नहीं होगा। आज मजदूरों को भी तनख्वाह चेक से मिलने लग पड़ी है ताकि वो उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। तो आज एक वे ऑफ लाइफ बदला है।
उनके बजट भाषण में एक महत्वपूर्ण घोषणा राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर भी थी। दूरदर्शन के ही इंटरव्यू में उन्होंने इसे स्पष्ट किया।
मेजॉरिटी फंडिंग अभी भी वही है और टीवी सारे एक्सपोजर देते हैं कि कैश में पैसा आता है और 20,000 से छोटे डोनेशन दिए ऐसे फर्जी नामों में एडजस्ट हो जाता है, अनोनिमस फेक डोनेशंस। इस आरोप में शायद सच्चाई है, इसलिए अब आगे बढ़ के एक विकल्प को इमेजिन करना है।
और उन्होंने विकल्प दिया कि अब हर राजनीतिक पार्टी एक स्रोत से सिर्फ 2,000 रुपए तक का ही चुनावी चंदा ले सकेगी। अब तक ये सीमा 20,000 रुपए थी। बहरहाल बजट पर राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया लगभग वैसी ही रही जैसी उम्मीद की जा रही थी। मसलन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को निराशाजनक बताया।
नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं, पिछले साल 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ठीक है, दिस इज अ शेमफुल थिंग, ठीक है, 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। दूसरी बात, किसान रो रहा है, किसान को कर्ज माफ करने की जरूरत है, बड़े बड़े भाषण दिए किसानों की सरकार, किसानों की सरकार, कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं, उस पे कोई गहरी चीज नहीं बोली। शुरुआत में पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लंबा भाषण दिया, बुलेट ट्रेन की बात की और बुलेट ट्रेन का विजन दिया, ठीक है, बुलेट ट्रेन आई? आई नहीं आई?
राहुल गांधी ने सवाल पूछा, बुलेट ट्रेन आई नहीं आई? आइए बातचीत में शामिल करते हैं आलोक पुराणिक को, जो आर्थिक विषयों के जानकार हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। आलोक, बजट चुनावी है या गांव देहात के किसानों को रिझाने वाला है, क्या ख्याल है आपका?
देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार पर जो आरोप लगते रहे हैं कि सरकार सूट बूट की सरकार है,
ये राहुल गांधी ने
आरोप लगाया था, इस बात को इस सरकार ने बहुत दिल पे लिया है, गंभीरता से लिया है। आप देखें, गांव के और कृषि से संबंधित जो एलोकेशंस हैं उसमें 24% की बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा पे, जो कि गांव की एक बड़ी स्कीम है, 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, पिछले बार से 10,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि ये सुनिश्चित किया है सरकार ने कि भूले से भी कोई ऐसा स्टेप ना लिया जाए जिससे बड़ी कंपनियों को फायदा होता हो
और इनकी छवि ऐसा लगे कि ये गरीबों के खिलाफ।
सूट बूट के पास
मनरेगा की आपने जिक्र किया, मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोकसभा में कहा था कि ये कांग्रेस की विफलता के मॉन्यूमेंट्स हैं और इनको मैं ख़त्म नहीं करूंगा, और बढ़ा दिया पैसा।
हाँ, और पिछली बार करीब 36,000-38,000 करोड़ था, 10,000 करोड़ बढ़ाया उस पर। उसमें कंपनीज़ का कॉरपोरेट टैक्स जो कम किया गया है वो उन कंपनीज़ का कम किया गया है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, यानी बड़ी कंपनियां इसके दायरे से बाहर हैं। इसमें महत्वपूर्ण काम हुआ है जिससे मुझे लगता है कि इस सरकार को ये रियलाइजेशन हुआ है कि नोटबंदी की मार पड़ी है इकॉनमी के उन सेक्शंस में जो बहुत संपन्न सेक्शन नहीं है। अगर आप देखें, इसमें कंस्ट्रक्शन को बहुत बढ़ावा दिया गया है, सस्ती हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये, जब कंस्ट्रक्शन रिवाइव होता है तो उसमें स्टील, सीमेंट, हाउसिंग फाइनेंस, इन सबको रिवाइवल मिलता है। और एक चीज़ समझ,
और जीडीपी बढ़ती है
और समझ में आ रही है कि रोजगार, कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कम पढ़े लिखे अकुशल व्यक्ति को भी रोजगार मिल जाता है। अगर आप इस बजट को जोड़ कर देखें इकोनॉमिक सर्वे से, तो सरकार की चिंताएं रोजगार को लेकर बहुत साफ हो रही हैं कि जो नौकरियों के वायदे किए गए थे उतनी डिलीवर नहीं हो पा रही।
आलोक पुराणिक, आप हमारे साथ बने रहिए, आम बजट पर चर्चा जारी है। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
का भारत चीन युद्ध, चीनी जनमुक्ति सेना के फौजी वांग ची हमलावर बनकर आए पर फिर कभी अपने मुल्क लौट नहीं पाए।
मैंने सीधा इंडिया अंदर लाए, कोई कागजाज नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं।
युद्धबंदी के तौर पर जेल काटी, मजबूरन भारत में ही बसना पड़ा, परिवार बसाया, पर जीवन की संध्या में अब चीन लौटना चाहते हैं वांग ची।
मेरा बाल बच्चे है, परिवार है, तो उनको देखना पड़ेगा ना।
क्या घर लौट पाना इतना आसान होता है? वांगची का घर, सुनिए भारत में फंसे चीनी फौजी की कहानी मुझसे यानी विनीत खरे से, सिर्फ बीबीसी हिंदी रेडियो पर रविवार 5 फरवरी शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में और 6 फरवरी सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। वांगची का घर,
तो सुनना न भूलिएगा। फिलहाल चर्चा कर रहे हैं आम बजट पर। इस बजट पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है? उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में हमारे संवाददाताओं ने लोगों से पूछा कि बजट उन्हें सुहाता है या नहीं। पहले पटना के लोगों की राय।
वेमेंस के लिए देखा जाए तो बहुत बेनिफिटेड है। फिलहाल जो रूरल हमारी महिलाएं रहती हैं गांव में, उनके लिए बहुत बेनिफिटेड है। एक तो आंगनवाड़ी के थ्रू बेनिफिट होगी उनको और उनके बच्चों को। दूसरी है कि जो गवर्नमेंट प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अनाउंस किया वो बेहतर है। वर्किंग वेमेंस के लिए भी एक सेक्शन तक बहुत अच्छी बात है कि 5 से 10 लाख में हमें टैक्सेस नहीं देनी पड़ेगी, तो वो एक पैसा हमारे पास रहेगा। फिलहाल तक महिलाओं के लिए ज्यादा काम करना चाहिए उन्हें ऑक्यूपेशनल वे, मतलब उन्हें कोई काम दे, उनको कुछ ऐसी सिखाने की स्कूल खोला जाए गाँव में जिनके थ्रू वो अर्न कर पाए।
टुकड़े टुकड़े में जब हम देखते हैं तो कुछ बातें हमको पॉजिटिव लगती हैं, जनपक्षी लगती हैं, जैसे कि मनरेगा का कुछ बजट बढ़ा है, जैसे कि कर में छूट दी गई है, जैसे कि किसानों की बात की गई है, उनको रियायतें देने की बात की गई है, ये सब बातें पॉजिटिव दिखती हैं। लेकिन बड़े पूंजीपतियों का 29% से लेकर के 25% जो कर दिया गया है, वह इससे लाभ किसको होने वाला है? और जो बड़े पूंजीपति हैं उनको फिर से टैक्स में छूट दे दी गई है। सब मिलाकर के जब हम देखते हैं तो हमको वही चेहरा फिर दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार बड़ी पूंजीपतियों के पक्ष में ये सारा बजट पेश किया गया है।
जैसे सर, हम काउंटर से इसलिए टिकट कटवाने जाते हैं क्योंकि वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा टेकन होता है मगर वहाँ पैसे थोड़ा कम लगते हैं। और आज गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है तो अब तो लग रहा है बेटर होगा घर बैठ के ही टिकट काटना, क्योंकि टैक्स लगेगा नहीं और मेरा टाइम भी बच जाएगा, तो वो ये सरकार का अच्छा पहल है। और दूसरा पॉइंट है कि ये सुरक्षा और साफ़ सफाई का, तो ये बोलना बहुत आम बात है मगर इसको ज़मीनी पहल पर लाने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग डेली ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन का स्टेटस क्या है और उसका जो कल्चर है, मतलब साफ़ सफाई के मामले में वो बहुत पीछे है।
नहीं, आज का बजट रियली डायनेमिक बजट है जो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ये प्रिपेयर किया गया है। 2000 से कम अगर चंदा हो गया और एकदम ओपन ट्रांसपेरेंट अगर रहा तो बहुत समझते ये बहुत अच्छा होगा।
ये थी पटना के लोगों की राय, और अब सुनते हैं मुंबई के लोगों का क्या कहना है। उनकी राय जानने पहुंची सुप्रिया सोगले।
ये बजट की खास बात यह है कि सबसे पहले तो ग्रामीण के जो गांव वालों के लिए जो किया है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा बेस तो गांव ही है ना, अनाज होगा तो ही हम लोग जिंदा रहेंगे। अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हम अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। प्लस जो इनकम टैक्स में 3 लाख किया लगभग, ये भी ठीक है।
बजट में तो छोड़ो, टैक्स में जो पर्सनल लोन लेते हैं उसको भी काउंट करना चाहिए यार।
अच्छा, तो
क्योंकि पर्सनल लोन आम जनता बहुत लेती है, होम लोन को ही टैक्स में दिखाते हैं लेकिन पर्सनल लोन को नहीं दिखाते, तो पर्सनल लोन को भी काउंट करना चाहिए। रेलवे का तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि पहले जो हम लोग ई टिकट निकालते थे उसमें परसेंटेज उनका चार्ज लगता था 20-40 रुपीज कैंसिलेशन का, लेकिन ये सब वेव कर दिया, बहुत अच्छा किया।
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फार्मर्स लोग के लिए ज्यादा किया और शुगर केन इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने 9000 का दिया। And they are predicting growth of GDP around 7.6%, which is good for us. ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने जो 2000 का उन्होंने दिया कि मैक्सिमम 2000 तक वो कर सकेंगे, 10000 के बदले 2000, और दे हैव टू कीप अ रिकॉर्ड, वो चीज एक अच्छा किया उन्होंने।
अब तक तो जितने छोटे बहुत पॉइंट्स पता है वो अच्छा लग रहा है, जो इनकम अंडर 5 लाख के लिए जो कम किया है 2.5% तक, कॉर्पोरेट टैक्स 25% किया है। It's pretty good for now. At least better than जो पहले था। There was a good thing for मनरेगा के ऊपर भी काफी कुछ बताया है, तो वो सब के हिसाब से काफी अच्छा है। Let's see कैसे चलता है आगे। थोड़ी महंगाई of course है थोड़ी, but that's okay. और ये जो उन लोग पार्टीज के ऊपर जो 2000 कर दिया from 20000 जो कैश के लिए, which is a good thing, जो अच्छी बात है, सब लोग के लिए ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात है। मोदी इज डूइंग अ गुड जॉब।
मोदी इज डूइंग अ गुड जॉब, ये कहना था मुंबई के एक आम आदमी का। उधर चुनाव के रंग में रंगे उत्तर प्रदेश से भी लोगों ने बजट पर अपनी राय दी है।
बजट तो बढ़िया है, कर्मचारियों के लिए बढ़िया है। जो बढ़ा दिए हैं सिर्फ 3 लाख कर दिए हैं, उस बात जो 5% लगे 5 लाख तक है, जो है पहले 10% था।
और कम हो जाता तो और ठीक है।
क्या चीज़
माने
तो वाला
जी, टैक्स वाला
तो कितना आप कितना चाह रहे हैं कि कितना हो जाता?
अरे भाई, हम लोग तो चाहेंगे कि कम से कम हो तो हमारा पैसा हमारे भारत में रहेगा।
यार, 1 करोड़ रुपए पर जो 1% ऑफ दे रहे हैं वो व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा हो गया है। जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हैं सरचार्ज, वो 1 करोड़ पकड़ दिए हैं।
और किसानों के लिए भी कुछ है? कुछ
हम लोग अभी देखिए, पूरा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन जो हल्का फुल्का जानकारी है उसके आधार पर 10 लाख करोड़ का जो है धनराशि जो बजट प्रावधान कर रहे हैं उसमें किसानों के लिए आय दूना करने के लिए।
जनता परेशान है नोटबंदी से।
नोटबंदी से परेशानी तो हुई है, मगर अगर सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी अगर गरीबों के लिए 2000-4000 महीना उनको दें तो ये लगेगा कि नहीं, नोटबंदी से फायदा हुआ है।
नोटबंदी से फायदे की बात कह रहे हैं आम लोग, और आलोक पुराणिक आपको बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं
जी, जी।
लोग आम तौर पर जो ये अभी तक आवाज़ें हमारे पास आई हैं इस बजट से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्या उनके पास ये जानकारी की कमी है या जो संदेश अरुण जेटली देना चाहते थे वो दे चुके हैं लेकिन दरअसल जो वस्तुस्थिति है जो रियलिटी है वो उन तक नहीं पहुंची है?
देखिए, एक तो बजट ने ये किया है कि बजट से पहले डर होता है करदाताओं में, पब्लिक में, कुछ महंगा ना हो जाए, है ना। और इससे पहले ये लगभग मान के चला जा रहा था कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएगा तो सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा, जो करीब 15% के आसपास है वो बढ़ के 18% हो जाएगा, लेकिन ऐसा अरुण जेटली ने नहीं किया। तो एक है कि मेरी जेब से पैसा जो निकलने वाला था वो नहीं निकला, तो जान बची और लाखों पाए वाला भाव है उसमें। मेरा मुझे इसमें एक बात ये ऐड करनी है कि ये अभी हमें इस बजट को या किसी चीज़ को टैक्स को फाइनल नहीं मान लेना चाहिए। जुलाई में इस बार GST लागू होने का मामला आने वाला है,
तो उसके बाद तो
फाइनल करों के कैलकुलेशंस, फाइनल रेवेन्यू कैलकुलेशंस क्या होने हैं ये मुझे लगता है तब दिखाई पड़ने वाला है। इसको मोटे तौर पे आप माने कि जो व्यवस्था चली आ रही है वही चलाए रखने की बात है, और बाकी उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशंस, अपनी इच्छाओं का दस्तावेज दिया है। लेकिन जुलाई में GST जब फाइनल हो जाएगी, कितने कर संसाधन केंद्र के हैं, कितने राज्य के हैं, कितना उनके पास बन रहा है, क्योंकि जो आंकड़ा मुझे मेरे सामने है उसमें उन्होंने बहुत उदारतापूर्वक ऐसा प्लान किया है कि 15,15,771 करोड़ रुपया उनको इस साल मिलेगा रेवेन्यू से, जो पिछले साल की रकम से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये किस आधार पर किया गया है, वो GST से क्या उम्मीद कर रहे हैं, फाइनल GST की सूरत क्या आने वाली है? तो संक्षेप में कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि मैं इसको फाइनल बजट नहीं मान रहा।
क्या यही वजह है आलोक पुराने के, जो हम बहुत ही परंपरागत तौर पर सुनते थे कि चूड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हो गई, बिंदियाँ सस्ती हो गई हैं, चप्पलें महंगी हो गई हैं, बीड़ी सिगरेट महंगी हो गई है, इस बार वैसा कुछ है ही नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं बोला गया?
मोटे तौर पे इस बार
जहाँ तक मैंने सुना,
मोटे तौर पे 1 फरवरी को आप वही खर्च कर रहे होंगे जो आप 31 जनवरी कर रहे थे। मुझे लगता है कि जुलाई के बाद हम
बदलेंगे,
कंक्रीट पिक्चर और आएगी और हम तब एक शो और कर रहे होंगे कि अब क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पुराणिक। अब अरुण जेटली ने अपने बजट को किसानों, गरीबों और युवाओं का बजट बताया है, पर उद्योग जगत की क्या राय है ये हमने नहीं सुना अभी तक। ये जानने के लिए हमारी सहयोगी शिल्पा कन्नन ने NIIT के विजय तंडानी और त्रिवेणी कार्बाइन के निखिल सोनी से बजट के विभिन्न पहलुओं पर बात की।
कितना इफेक्ट हुआ है नोटबंदी की वजह से रूरल एरियाज में?
जी, हमारी शुगर बिजनेस में कोई असर भी नहीं पड़ा वैसे हमारे फार्मर्स के तरफ से। हमारी सारे पेमेंट्स फार्मर्स को चेक्स में जाती है, उन तो हमारी पेमेंट के साइड कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर उनके एक्सपेंडिचर में तो बिल्कुल हुआ था इम्पैक्ट। जैसे आप भी जानते हैं कि विदड्रॉल लिमिट्स तो थे अभी तक, तो मुश्किल तो कठिनाई तो थी।
ये एक थोड़ा सा पॉपुलिस्ट बजट कहा जा रहा है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ रूरल एरियाज़ के लिए था, स्पेंडिंग के लिए था। और कुछ कर सकते थे क्या फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं, यूपी में इलेक्शंस आ रहा है, तो इस माहौल में और क्या कर सकते थे वो?
मेरे हिसाब से वो अगर पॉपुलिस्ट करना चाहते तो इससे ज़्यादा पॉपुलिस्ट कर सकते थे, पर जैसे इन्होंने बताया कि इस टाइम पे इलेक्शंस के बीच में है तो वो ठीक शोभा भी नहीं देना था। तो मेरा ख्याल जो भी उन्होंने किया उस हिसाब, अगर आप पॉपुलिज्म के हिसाब से देख रही हैं तो वो काफ़ी बैलेंस्ड है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं कि आपको कल सुबह को कुछ मिल जाएगा, है ना। तो वो अच्छी चीज़ें हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है, इसलिए मैं इस बजट को पॉपुलिज्म पे ज़्यादा हाई नहीं रेट करूँगा, बैलेंस पे ज़्यादा रेट करेंगे। पर इंडस्ट्री का जिनको जो देख रहे हैं, जो डिमोनेटाइजेशन हुई है उसका जो बेनिफिट है, इंडस्ट्री वॉज होपिंग और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका कुछ बेनिफिट जो है वो इंडस्ट्री को पास ऑन होगा, वो इसके अंदर अभी दिखाई नहीं दिया। अगर किसी फाइन प्रिंट में है तो वो देखना पड़ेगा।
ये बात कर रही थी हमारी सहयोगी शिल्पा कन्नन बिजनेस के कुछ लोगों से। आलोक पुराणिक, एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश में चुनावों का भी मौसम है, पंजाब में, गोवा में, हर जगह चुनाव हो रहे हैं, इससे जो संदेश देना चाहते थे नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली दे पाए हैं?
देखिए, अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो चुनाव बेसिकली तथ्यों पे नहीं, तथ्यों की कहानी पे लड़े जाते हैं,
परसेप्शन पे लड़े
जाते हैं। और परसेप्शन नोटबंदी का ये गया है कि ये गरीबों के साथ भ्रष्ट अमीरों के खिलाफ लड़ाई थी, तो ये
और अगर यही संदेश गया तो राजनीतिक फायदा होगा।
ये संदेश बजट से पहले भी सफलतापूर्वक देते आए हैं, तो तथ्य हम इम्पोर्टेंट नहीं करें, तथ्यों की कहानी क्या बताई जा रही है। और वो सर्वे आफ्टर सर्वे में देखता हूँ मोदी इस कम्युनिकेशन को पब्लिक में डालने में सफल रहे हैं कि समस्या भूलिए, आप काले धन के योद्धा हैं और मैं उसका सेना।
जैसे एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि अरुण जेटली ने कहा 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज देने का प्रावधान किसानों को है। एक सज्जन ने अभी हमने उनकी बात सुनी, किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, इस तरह का संदेश इस तरह से जाता है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पुराणिक आपका। अभी हमारे पास एक खबर और बाकी है तो मैं यहाँ आपसे विदा चाहता हूँ। आप BBC हिंदी सेवा से कार्यक्रम सुन रहे हैं दिन भर। मध्य प्रदेश की एक अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सुनील जोशी की हत्या के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। इसमें मालेगांव विस्फोट मामले में अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा भी शामिल हैं। भोपाल से शुरू नियाजी की रिपोर्ट।
आरएसएस के पूर्व प्रचारक सुनील जोशी की हत्या 29 दिसंबर 2007 को देवास में कर दी गई थी। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 2011 में NIA को सौंपा गया था ताकि देश में उस वक्त लग रहे भगवा आतंकवाद के आरोपों की जांच की जा सके। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर सहित हर्षद सोलंकी, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार, आनंद राज कटारिया, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी और जितेंद्र शर्मा को आरोपी बनाया गया था। इन पर हत्या, साक्ष्य छुपाने और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ किसी भी तरह के सबूत पेश नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से ADG राजीव कुमार आप्टे ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर के वकील रघुवीर यार्दी ने बताया,
साध्वी प्रज्ञा सिंह जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो भोपाल में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाई हैं। 4 एक्यूज जिसके अतिरिक्त जो थे ये सब लोग पूर्व से ही बेल पे एनलार्ज थे और आज उनको न्यायालय ने उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया। इसके पश्चात लोक कोर्ट ने बताया कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना केस सिद्ध कर पाने में असमर्थ रहा है, इसलिए सभी आरोपियों को इनको दोषमुक्त कर दिया।
साध्वी प्रज्ञा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी रही हैं और उनकी गिरफ्तारी मालेगांव ब्लास्ट केस के वक्त की गई थी। प्रज्ञा ठाकुर कई तरह की बीमारियों से जूझ रही हैं और उनका इलाज इस वक्त भोपाल में हिरासत में चल रहा है। साध्वी प्रज्ञा इलाज की वजह से कोर्ट में मौजूद नहीं थी। हर्षद सोलंकी बड़ौदा से ताल्लुक रखते हैं और अजमेर जेल में बंद हैं। सुनील जोशी की हत्या के मामले से पहले उनका नाम 2007 के अजमेर दरगाह ब्लास्ट में भी आ चुका था। इसके अलावा उस पर यह भी आरोप है कि उसने 2002 में बड़ौदा की बेस्ट बेकरी में आग लगाई थी जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा पंचकुला जेल में हैं, जबकि जितेंद्र शर्मा, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार और आनंद राज कटारिया फिलहाल जमानत पर हैं। इन सभी का ताल्लुक हिंदूवादी संगठनों से है। शुरहनियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
और अब वक्त है खेल समाचारों का। सुमिरन प्रीत कौर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके खजाने में क्या है सुमिरन?
जी आज तो वो निर्णायक मैच है, T20 सीरीज का आखिरी मैच है आज, और इंग्लैंड ने जीता टॉस और निर्णय किया कि वो करेंगे बल्लेबाजी। और ऐड आ चुका है, लेकिन मैं स्कोर बता देती हूँ कि बस 100 रन बनने वाले हैं। 1 रन से अभी भारत पीछे है, 2 विकेट खो चुके हैं। शुरुआती झटका भारत को लगा जब विराट कोहली का विकेट भारत ने गंवाया। वो रन लेना चाह रहे थे लेकिन KL राहुल उस वक्त नहीं आ पाए उनके पास और विकेट चला गया। दूसरा विकेट फिर KL राहुल का ही था जो बेन स्टोक्स की बॉल पर आउट हो गए। और अब क्रीज पर हैं महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। तो अब मैं बात करती हूँ ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज मुकाबला हुआ भारत
दिल्ली में।
जी ये मुकाबला हुआ दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान को भारत ने पाकिस्तान ने भारत को 7 विकेट से हराया। और जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं अजय कुमार रेड्डी, उन्होंने कहा कि अभी गेम बाकी है।
बड़े बार हम लोग कोशिश किए लीग में भी जीतने के लिए, फिर अनफॉर्चुनेटली हमारा बॉयज तो बहुत फील्डिंग मिस्टेक हुआ है क्योंकि क्राउड का वजह से थोड़ा बॉल भी थोड़ा डिस्टर्ब बहुत डिस्टर्ब हुआ था। फिर भी नेक्स्ट मैचेस हम लोग बहुत अच्छा खेलेंगे, फाइनल के लिए रेडी हो जाते हैं। इस हम लोग हार से बहुत कुछ सीखते हैं, वो सीखने के बाद फिर नेक्स्ट अगले मैचेस में वो रिपीट नहीं होने।
तो इसकी पूरी विस्तृत खबर आप कल सुबह हमारे कार्यक्रम नमस्कार भारत में सुन पाएंगे। सुमिरन प्रीत कौर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने सभी साथियों की ओर से आप सबसे अनुमति चाहता हूं, कल सुबह 6:30 बजे एक बार फिर आपके पास हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम का संचालन किया अजीत सारथी ने। नमस्कार।